हिडन फाइल्स साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ ओनली ऑन रेड एफएम। रेड एफएम पर हिडन फाइल्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। बचपन के दोस्त किसे नहीं प्यारे होते, हम सब भी बचपन वाली दोस्ती चाहते हैं। लेकिन क्या हो जब आपकी जिंदगी में वो दोस्त तो वापस आए लेकिन साथ में लाए करोड़ों का नुकसान। सुनिए आज का ये बेहद दिलचस्प रियल लाइफ साइबर क्राइम केस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से।
हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है राठ। विकास की शुरुआती पढ़ाई उसी कस्बे में हुई थी। विकास लाल फिलहाल एक कंपनी के सीईओ हैं और पुणे में रहते हैं। विकास को उस दिन किसी काम से मुंबई जाना था। वो भी गाड़ी में बैठा ही था कि उसे एक मैसेज आया, हाय विकास, कैसा है तू? विकास को लगा कि ये तो कोई पुराना दोस्त लगता है। विकास ने रिप्लाई में लिखा, भाई मैंने पहचाना नहीं। वहां से मैसेज आया, अबे भूल गया, क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल राठ, मैं गौरव। विकास अब याद करने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर लिखा, नॉट एबल टू रिकलेक्ट, इट्स बीन ईयर्स। गौरव ने फेसबुक मैसेंजर पर ही एक फोटो भेजी और साथ में लिखा, ये देखो मैं स्कंद और तुम एक साथ, स्कंद के बर्थडे पर शायद। विकास ने स्कंद को तुरंत पहचान लिया और एक्साइटेड होके लिखा, अरे वाह, सो नॉस्टैल्जिक, तुझे पता है स्कंद कहाँ है? गौरव ने कहा, स्कंद बैंगलोर में है। विकास को बातचीत में मजा आ रहा था, वो अपनी सारी पुरानी बातें याद करना चाहता था और उसने लिखा, स्कंद गुप्ता के पिता तो बैंक में थे ना? गौरव ने लिखा, यस, बट वो लोग अब रिटायरमेंट के बाद स्कंद के साथ ही बेंगलोर में हैं। विकास ने कहा, तू मुझे उसका कॉन्टेक्ट भेजना, आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर हिम। गौरव ने लिखा, एक्चुअली आई लॉस्ट हिज कॉन्टेक्ट, आई थिंक ही चेंज्ड हिज नंबर रिसेंटली, एनीवेज आई विल फाइंड आउट एंड शेयर विद यू। दोनों दोस्तों की बातें करीब घंटे भर चलती रही और रास्ता कब निकल गया विकास को पता ही नहीं पड़ा। विकास मुंबई पहुंच गया और वो अगले दिन मुंबई में ही था जब उसे गौरव का मैसेज आया जिसमें लिखा था, स्कंद का नंबर मिल गया, ही विल कॉल यू टुडे, और मैसेज पर स्कंद का नंबर भी था। थोड़ी देर बाद स्कंद का भी कॉल आ गया। स्कंद ने कहा,
अबे विकास कहाँ है तू?
और विकास ने तो जैसे दिल खोल दिया। करीब 35 सालों बाद वो अपने जिगरी दोस्त से बात कर रहा था। विकास कहता गया,
अरे यार राठ से पापा का ट्रांसफर हुआ, हम झांसी आ गए और उसके बाद कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रहा। वो तो भला हो इस फेसबुक का, मैंने उस पे लिखा और देख मैंने तुझे ढूंढ लिया। अच्छा ये तो बता तू क्या कर रहा है?
स्कंद ने कहा,
अरे मैं एक आईटी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पर सुना तूने तो बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया।
विकास ने हम्बल होने की कोशिश करी,
अरे बस चल रहा है। अच्छा सुन, अभी मैं एक बड़ी बिजनेस मीटिंग में एंटर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टेंडर है, दिस विल चेंज माई लाइफ, हम शाम को आराम से बात करते हैं ना?
स्कंद ने कहा,
अरे अरे नो वरी भाई, आराम से कॉल कर, ऑल द बेस्ट फॉर मीटिंग।
मीटिंग के बाद शाम को विकास ने फिर स्कंद को कॉल किया और दोनों बहुत खुश थे। स्कंद ने कहा,
अरे ऐसा कैसा बड़ा टेंडर है जो तेरी जिंदगी बदल रहा है, मैं भी कुछ मदद करूँ क्या?
विकास ने कहा,
अरे करीब 750 करोड़ का टेंडर है, अच्छी बात यह है कि आई हैव डन इनफ होमवर्क टू गेट एक्सक्लूसिव कोर्स फ्रॉम OEMs, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, देखना।
आई एम श्योर यू वर ऑलवेज स्मार्ट।
बातचीत नॉर्मल ही थी, पर अगले दिन जब स्कंद ने विकास को फोन किया तो वो फोन नहीं उठा रहा था। विकास का मैसेज आया, कॉस्ट नेगोशिएशन में फंसा हूं, एक OEM है ग्लो IT करके, उसका हार्डवेयर क्रिटिकल है इस टेंडर में। स्कंद ने लिखा, ओ आई नो फ्यू सीनियर गाइज इन ग्लो IT, शुड आई कॉल देम? विकास ने कहा, आई थिंक आई कैन मैनेज फॉर द टाइम बींग, कुछ होगा तो बताऊंगा। स्कंद की और विकास की अब बातें जब भी होती उस टेंडर का जिक्र आ ही जाता और धीरे धीरे स्कंद को भी विकास के प्रपोजल के बारे में अच्छा आइडिया हो गया था और वो कुछ सजेशंस भी दे देता था। टेंडर प्रपोजल सबमिट हो गया था और टेंडर 27 नवंबर को खुलना था। स्कंद ने फोन करके कहा,
मैं 27 नवंबर को मुंबई में ही रहूंगा।
विकास एक्साइटेड था,
अरे क्या बात है, फिर तो टेंडर खुलने के बाद हम पार्टी करेंगे।
27 नवंबर को सुबह जब विकास ने स्कंद को कॉल लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। विकास को लगा कि स्कंद शायद फ्लाइट में होगा। उसने स्कंद को एक मैसेज छोड़ दिया कि शाम को एयरपोर्ट के पास वाले एक होटल में मिलेंगे। शाम 5 बजे टेंडर खुलना था और विकास अपनी टीम के साथ गवर्नमेंट ऑफिस में ही था। टेंडर ओपन होके अनाउंस हुआ तो विकास के होश उड़ गए। जिस कंटेंडर को विकास सबसे ज्यादा वीक समझ रहा था, टेंडर उसे एलोकेट हो गया था। विकास की कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा झटका विकास को तब लगा जब उसे पता पड़ा कि जिस कंपनी को टेंडर एलोकेट हुआ है उसकी और विकास के कोर्ट में सिर्फ 10 करोड़ का डिफरेंस है। विकास ने 720 करोड़ का कोर्ट किया था और सामने वाली कंपनी ने 710 करोड़ का। इतना क्लोज डिसीजन, विकास हैरान था। उसे एक पल को लगा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वो थके हारे कदमों से वापस होटल की ओर लौट पड़ा। स्कंद से मिलने की अब उसकी इच्छा नहीं थी, पर अजीब बात थी, स्कंद का भी कॉल नहीं आया था। विकास पुणे लौट गया और नॉर्मल रूटीन में बिजी हो गया, और बीच बीच में वो बार बार स्कंद को कॉल लगाता रहा, पर स्कंद का फोन बंद ही आ रहा था। स्कंद के बारे में कुछ और पता करने के लिए उसने गौरव को फोन लगाया, और विकास को झटका तब लगा जब गौरव का फोन भी लगातार बंद ही आ रहा था। 2 दिन वेट करने के बाद भी जब दोनों के ही फोन बंद आए तो विकास को लगा कि कहीं कुछ सीरियस बात है। कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन वो चाहता था कि प्राइवेट लेवल पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, और इसलिए उसने मुझे कॉन्टेक्ट किया। जब विकास ने अपनी पूरी कहानी मुझे बताई तो मैंने शुरू से डॉट कनेक्ट करने शुरू किए। विकास को सबसे पहले गौरव ने कॉन्टेक्ट किया और उसने उससे अपना पुराना दोस्त बताया। उसने कहा कि वो विकास के साथ क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल राठ में ही पढ़ता था। दरअसल विकास की पढ़ाई भी इसी स्कूल में हुई थी, ये बात बहुत लोग नहीं जानते थे। गौरव ने स्कंद का जिक्र किया, स्कंद विकास का अच्छा दोस्त था, और यह बात भी बहुत लोगों को नहीं पता थी क्योंकि यह करीब 35 साल पुरानी बात थी। और उसके बाद स्कंद और विकास की बातचीत। विकास ने मुझे वो बचपन के फोटोग्राफ भी भेज दिए जिसमें वो और स्कंद गौरव के साथ दिख रहे थे। सबसे पहले मैंने वो फोटोग्राफ्स एनालाइज करना शुरू किया तो थोड़ी देर में ही मामला साफ हो गया। ये पिक्चर तो डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट की गई थी। उसके बाद हमने विकास का सोशल मीडिया एनालिसिस करना शुरू किया, उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। और वहां मेरी नजर एक पोस्ट पर जाकर अटक गई। विकास ने करीब 2 महीने पहले एक पोस्ट की थी, लुकिंग फॉर माय ओल्ड फ्रेंड स्कंद गुप्ता, और वहां उसने अपनी एक पुरानी तस्वीर स्कंद गुप्ता के साथ पोस्ट की थी। गौरव का फोन इस पोस्ट के करीब 1 महीने बाद आया था। जाहिर सी बात है, कोई था जो विकास का ट्रस्ट जीतना चाहता था, और उसे इस पोस्ट से वो क्लू मिल गया। उसने विकास के इमोशंस का फायदा उठाया और एक पुराने दोस्त के रूप में आकर तुरंत उसका भरोसा जीत लिया। विकास ने जो तस्वीरें देखी उन्हें देखकर उसके पास कोई कारण नहीं था कि वो अपने पुराने दोस्त पर विश्वास न करे। पर अब टाइम आ गया था कि एक पुलिस कंप्लेंट कर दी जाए। विकास ने एक पुलिस कंप्लेंट कर दी कि उसके साथ इंपर्सोनेशन के जरिए धोखाधड़ी की गई है। स्कंद और गौरव के नंबर की पड़ताल शुरू हुई तो दोनों ही नंबर अनजान लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थे और अब बंद थे। जाहिर सी बात है कि क्रिमिनल्स ने ये नंबर सिर्फ विकास से बात करने के लिए ही लिए थे। फेसबुक अकाउंट के आईपी लॉक से भी गौरव और स्कंद तक पहुंचने की कोशिश की गई, पर क्रिमिनल्स बहुत शातिर थे। हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था जिससे हम उनकी असली पहचान तक पहुंच सके। सवाल यही था कि स्कंद और गौरव को विकास से ट्रस्ट बिल्ड करके क्या फायदा हुआ। मैंने विकास से पूछा कि इस दौरान कहीं आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो अपने फोन में, या आपका कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ हो। और विकास ने झिझकते हुए यही कहा, क्रिप्टो आईटी फर्म। यह वही कंपनी थी जिसको वो गवर्नमेंट टेंडर अवार्ड हुआ था। तो क्या इस कंपनी ने विकास के डिटेल्स लीक करने के लिए किसी की मदद ली थी? अब हम यही सोच रहे थे कि स्कंद और गौरव का अगर कोई लिंक है इस कंपनी के साथ तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं। हमने स्कंद और गौरव के नंबर की लोकेशन निकाली तो वो मोस्टली मुंबई या मुंबई के सबर्ब्स में ही थी। अब हमने स्कंद और गौरव के नंबर के आईपीडीआर निकलवाए, आईपीडीआर यानी कि आईपी डिटेल्स रिकॉर्ड, जिसमें कि आपकी इंटरनेट की सारी गतिविधि रिकॉर्ड रहती है। हमने आईपीडीआर देखना शुरू किया कि इन दोनों की कोई कॉमन लोकेशन है क्या या लॉन्गेस्ट स्टेइंग लोकेशन, और हमें कुछ एड्रेसेस मिल गए कि स्कंद और गौरव कई बार लंबे समय तक बांद्रा एरिया में थे। हमने बांद्रा एरिया के सारे डिटेक्टिव एजेंसीज एंड प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के डिटेल्स निकाले। अब जरूरत थी ये पता करने की कि इन डिटेक्टिव एजेंसीज में क्या किसी का कोई संपर्क क्रिप्टो आईटी कंपनी के साथ रहा हो, पर यह सब इतना आसान नहीं था। हमने फोन के आईएमआई से यह पता करने की कोशिश भी की कि इन फोन्स में पहले भी कोई सिम यूज हुआ हो और उनके ओनर कौन थे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स से जो डिटेल सामने आई उसके हिसाब से दोनों ही फोन नए थे और इससे पहले उनमें कोई सिम यूज ही नहीं हुआ था। मामला यहां जाके अटक गया था और हम गौरव के फेसबुक अकाउंट को एनालाइज कर रहे थे कि शायद वहां से कुछ क्लू मिले। इस बात को अब करीब 15 दिन हो गए थे। मैं एक जीपीएस वॉच के लिए नया सिम लेने गया था और उस वक्त शॉपकीपर ने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई। दरअसल एक कंपनी के सिम कार्ड्स के साथ ऑपरेटर एक फीचर देता है, अगर आप अपने फोन के आईएमआई को एक एसएमएस कमांड के थ्रू 199 पर भेजें तो आपको यह पता चल जाता है कि आपके फोन में इस समय कौन सा सिम यूज हो रहा है। चोरी हुए फोन को ट्रैक करने का यह तो कमाल का फीचर है। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और मैंने उन दोनों सस्पेक्टेड फोन्स की आईएमआई नोट किए और यह कमांड 199 पर भेज दिया। मुझे उम्मीद थी कि करीब 30% चांसेस तो होते ही हैं कि चोरी हुए फोन में उसी कंपनी का सिम यूज हुआ हो। पहले आईएमआई नंबर का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर दूसरे आईएमआई का रिप्लाई आ गया था और रिस्पॉन्स देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मुझे उस फोन में यूज होने वाला करंट मोबाइल नंबर मिल गया था। हमने तुरंत वो नंबर पुलिस को दिया और उस नंबर की जांच शुरू हुई। वो फोन किसी रुबीना नाम की लड़की के पास मिला और रुबीना ने वो फोन किसी शॉप से खरीदा था। पुलिस ने जब उस शॉप ओनर से डिस्कशन शुरू किया तो पता चला कि वो सेकेंड हैंड फोन खरीदता बेचता है। आगे की पूछताछ में उसने एक्सेप्ट किया कि ये फोन उसे किसी कैब ड्राइवर ने बेचा था, और पुलिस जब उस कैब ड्राइवर तक पहुंची तो उसने कहा कि उसे यह फोन किसी कचरे में मिला था। अब कचरे में फोन फेंक के कौन गया था यह जानना तो बहुत मुश्किल था। मामला एक बार फिर अटक गया था, लेकिन तभी हमें एक अलर्ट टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आया और उनके मुताबिक इस फोन में पिछले 3 दिनों में 4 सिम कार्ड्स चेंज हुए थे। यह एक अच्छा ब्रेक थ्रू था। जब हमने उन 4 सिम कार्ड्स की जांच शुरू की तो मामला खुल गया। दरअसल जब सेकेंड हैंड फोन बेचे जाते हैं तो खरीदने वाला उसमें अपना सिम कार्ड डाल के चेक जरूर करता है, और यही ट्रेल इस बार हमारे काम आ गई। रुबीना से पहले शॉप ओनर का सिम कार्ड और उससे पहले कैब ड्राइवर का सिम कार्ड भी इसी आईएमआई पर रजिस्टर हुआ था, और उससे पहले एक और सिम कार्ड इस पर रजिस्टर हुआ था। वो व्यक्ति था दानिश। दानिश और कैब ड्राइवर दोस्त थे। दानिश एक डिटेक्टिव एजेंसी में टेक्नीशियन था। उसे इस फोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला गया था, लेकिन दानिश ने सोचा कि डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है कि उसे बेच के कुछ पैसा कमा ले। उसने ये फोन अपने कैब ड्राइवर दोस्त को बेच दिया और वहां से वो फोन रुबीना तक पहुंचा। दानिश पकड़ा गया और उसके स्टेटमेंट से हम उस डिटेक्टिव एजेंसी तक भी पहुंच गए। ये डिटेक्टिव एजेंसी इस तरह साइबर वर्ल्ड के थ्रू लोगों को ट्रैप कर उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने का काम करती थी। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर अपने बचपन की फोटोग्राफ्स पोस्ट कर देते हैं और वो ये नहीं जानते कि इन्हीं फोटोग्राफ्स का यूज करके लोग हजारों और फोटोग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। वो आपके किसी पुराने दोस्त के साथ लिंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो उसके रूप में आकर आपसे दोस्ती भी कर सकते हैं और उसी विश्वास का फायदा उठाकर आपके फोन को हैक भी कर सकते हैं या आपसे कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ध्यान रखिए, वर्चुअल वर्ल्ड में पोस्ट की गई कोई भी चीज सिर्फ आपके दोस्तों को दिखाई नहीं देती, वो क्रिमिनल्स भी देखते हैं। इसलिए किसी भी ऐसी चीज को पोस्ट करने के बाद सावधान रहें या इस तरह की पोस्ट से बचें। यदि आपको कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर मिलता है और आपके किसी पुरानी जानकारी का हवाला भी देता है, तब भी उससे कोई भी सेंसिटिव चीज शेयर करने से पहले एक बार उससे फिजिकली जरूर मिलें। जब तक आपको पूरी तरह विश्वास न हो जाए कि आपकी ये पहचान रियल वर्ल्ड पहचान है, तब तक उसके किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो न करें। और आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ये कहता है कि पब्लिक या प्राइवेट किसी भी तरह का वाईफाई हैक करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन फिर भी हो जाए तो, शायद इसीलिए हमसे साइबर सवाल इसी बारे में पूछ रहे हैं वेरी टैलेंटेड एक्टर मोहित रैना जी।
हाय अमित, मैं हूं मोहित रैना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि मैं अपने घर के जो मेरा वाईफाई है उसे सिक्योर कैसे कर सकता हूं, प्लीज उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए।
थैंक यू सो मच मोहित जी ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों को चिंता रहती है कि उनके घर के वाईफाई को कैसे सिक्योर करें। देखिए, आपके घर के राउटर में ही बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनको यूज कर आप उसे सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने राउटर का पासवर्ड बदल लें, वो डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उसमें जाकर जो इंक्रिप्शन सेटिंग है वो मैक्सिमम कर दें ताकि कोई भी ब्रूट फोर्स करके भी वो पासवर्ड क्रैक ना कर सके। और तीसरी बात, आप चाहें तो उसी राउटर में अपने घर की जो डिवाइसेस हैं उनको भी लॉक कर सकते हैं कि मेरे राउटर से सिर्फ यही डिवाइसेस एक्सेस होंगी और कोई भी दूसरी डिवाइस इस राउटर पर कनेक्ट होगी ही नहीं, भले ही उसको पासवर्ड भी पता हो तब भी। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन से आपका राउटर सिक्योर हो जाएगा और आपका वाईफाई कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। यदि आप अपने वाईफाई की सिक्योरिटी टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मोबी आर्मर ऐप तो है ही, आप armor.mobi वेबसाइट पर जाएं, वहां से प्ले स्टोर के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी वाईफाई की सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं कि वो कितना सिक्योर है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं या नहीं। मोहित रैना की तरह आप भी अपना साइबर सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं रेड एफएम इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। ऑल्टरनेटिवली आप फेसबुक पर Route64 फाउंडेशन के पेज पर या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स साइबर दुबे के थ्रू मुझ तक पहुंच सकते हैं। रेड एफएम हिडन फाइल्स के सारे एपिसोड्स रेड एफएम पॉडकास्ट पर अवेलेबल हैं। प्लीज लिसन एंड शेयर विद योर लव्ड वंस फॉर साइबर अवेयरनेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे साइबर सुरक्षित। रेड एफएम बजाते रहो।